38 फीट पर 16592 का ट्रैफिक लाइट।
मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। और यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे। बात के पुरुषार्थी पवित्रता के, क्योंकि न इधर के न उधर के, एक पांव उस पार जाने वाली नाव में और एक पांव उस पार वाली नाव में होगा, तो दो नाव में पैर रखने वाले का क्या हाल होगा? गिर जाएगा। इसलिए निर्णय करना चाहिए कि किस तरफ जाएं। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न जरूर डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है और शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वो भी निराकार विश्व का रचयिता। यादगार मंदिर हैं निराकार के, और वो निराकार है क्या? विश्व का रचयिता। विश्व कैसा है? विश्व साकार है। और रचयिता? रचयिता निराकार। निराकार का मतलब बिंदु नहीं, बिंदु रूपी स्टेज में रहने वाला, निराकारी स्टेज में रहने वाला रचयिता है। जो भी धर्म पिताएं आए और उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, वो अपने अपने धर्म के रचयिता हुए, सब निराकारी स्टेज वाले थे। क्योंकि बाप होता है निराकार और रचना होती है साकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि कुम्हार निराकार है तो घड़ा साकार रच देगा। कुम्हार रचयिता भी साकार होता है और घड़ा भी साकार होता है, लेकिन स्टेज की बात है। रचना को रचना ही कहेंगे। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, शूद्र है पत्थर बुद्धि। लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है रावण। इस समय रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा ही नहीं सकते। सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है, और वो सर्वशक्तिवान है एक परमपिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है और न स्थूल शरीर है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो निराकार फिर भारत में कैसे आया, जबकि उसका अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है। अब आत्मा आर्गन्स से बिगर तो कर्म नहीं कर सकती। आर्गन्स तो जरूर चाहिए, कुछ भी समझ से नहीं है, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचे से ऊंचे और उनकी मत भी सबसे ऊंचे है। नहीं तो भगवान का स्मरण क्यों करते हैं, याद करते हैं? अब भगवान तो निराकार, दाता कहा जाता है, वास्तव में वो देता तो किसी को कुछ भी नहीं है, और रावण किसी से कुछ लेता नहीं है। रावण भी मत देता है और राम भी मत देते, तो मत के आधार पर ही दाता कहा जाता है। तो श्रेष्ठ मत देने वाला है और रावण दुष्ट मत देने वाला है। श्रेष्ठ मत पर चलने वाले सब कुछ प्राप्ति कर जाते हैं और रावण की मत पर चलने वाले भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बाप की मत सिमरी जाती है। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है, मनुष्य तो समझती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु ये तो बताओ 5-3 हजार वर्ष पहले कौन थे और गीता सुनाई किसने, किस नेशन को सुनाई, किस युग में गीता सुनाई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाक्य लिखा है। और फिर रुद्र ज्ञानी अजी भी कहते हैं, रुद्र तो शिव बाबा को ही कहा जाता है, कृष्ण को कब बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेज फुल ब्लिस फुल है तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा भक्ति कब शुरू हुई, भगवान कब मिलता है, पाप आत्माओं से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम जो शूद्रवर्ण के थे अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो, और ब्राह्मण बनाया किसने, शिव बाबा ने बनाया। तो ये है रचयिता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंची, ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, वो परमपिता परमात्मा माना परमात्मा। कैसी आत्मा, परम परे से परे स्टेज में रहने वाली आत्मा। ये अक्षर पक्का याद कर लो, क्या परमात्मा, किससे कंट्रास्ट किया, परमात्मा जब कहा गया तो कंट्रास्ट किससे किया गया, आत्माओं से कंट्रास्ट किया गया, आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा तो कौन हुई। जब कंट्रास्ट करेंगे तो जरूर समान वालों में कंट्रास्ट किया जाता है। दो अक्षर हैं परम पिता और परमात्मा, ऐसे नहीं परमात्मा परम पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परम पिता पहले, जैसे शिव शंकर, ऐसे नहीं शंकर शिव, जैसे बाप दादा, ऐसे नहीं दादा बाप। तो जिसका नाम पहले रखा गया वो जरूर बड़ा ठहरा। परम पिता माना पिताओं में सबसे बड़ा, जिसका कोई पिता नहीं, प्रजापिता भी बड़ा नहीं, वो प्रजापिता का भी बाप है, प्रजापिता सारी प्रजा का पिता, लेकिन उसका भी पिता, वो कौन हुआ, जरूर सुप्रीम सोल कोई कहेंगे। तो सुप्रीम सोल शिव है परम पिता, पिताओं में सबसे बड़ा, परे से परे स्टेज में रहने वाला पिता, लेकिन आत्माओं के बीच सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, प्रजापिता, जरूर हीरो के लिए कहेंगे। अब शिव पिता हीरो बनता है क्या, शिव पिता हीरो नहीं बनता है, क्योंकि हीरो का पार्ट तो ऑलराउंड होता है और शिव तो अंत में आता है और उसी समय वापस चला जाता है, संगलुग में आना और संगलुग में ही वापस जाना, तो ऑलराउंड पार्ट तो नहीं हुआ। वो हीरो बनाने वाला है, स्वयं हीरो नहीं बनता, विश्व का मालिक बनाने वाला है, स्वयं विश्व का मालिक नहीं बनता। तो ये अक्षर पक्का याद कर लो, क्या परम पिता परमात्मा, परम पिता किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया, सुप्रीम सोल शिव के लिए।
माना पिताओं में सबसे बड़ा, जिसका कोई पिता नहीं, प्रजापिता भी बड़ा नहीं, वो प्रजापिता का भी बाप है, प्रजापिता सारी प्रजा का पिता, लेकिन उसका भी पिता, वो कौन हुआ, जरूर सुप्रीम सोल कोई कहेंगे। तो सुप्रीम सोल शिव है परम पिता, पिताओं में सबसे बड़ा, परे से परे स्टेज में रहने वाला पिता,
लेकिन आत्माओं के बीच सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? प्रजापिता। जरूर हीरो के लिए कहेंगे। अब शिव पिता हीरो बनता है क्या? शिव पिता हीरो नहीं बनता है, क्योंकि हीरो का पार्ट तो ऑलराउंड होता है और शिव तो अंत में आता है और उसी समय वापस चला जाता है। संगलग्ने आना और संगलग्ने ही वापस जाना, तो ऑलराउंड पार्ट तो नहीं हुआ। वो हीरो बनाने वाला है, स्वयं हीरो नहीं बनता। विश्व का मालिक बनाने वाला है, स्वयं विश्व का मालिक नहीं बनता। तो ये अक्षर पक्का याद कर लो, क्या? परमपिता परमात्मा। परमपिता किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया? सुप्रीम सोल शिव के लिए, और परमात्मा जिसमें वो प्रवेश करता है, जो परम पार्ट बजाता है। ड्रामा में परम पार्ट किसका होता है? हीरो पार्टधारी कौन होता है? जो हीरो पार्टधारी होती है उसी का परम पार्ट। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए, सुख शांति का वर्षा आकर के देता हूँ, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बाकी में कौन कौन आ जाते हैं? और तुमको देता हूँ, तुमको में कौन कौन आ जाते हैं? तुमको कहा जाता है सामने वालों को। तो जो सामने वाले बैठने वाले बच्चे हैं आदि से लेकर के अंत तक पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो बाप से सुख और शांति का पूरा वर्षा पाते हैं। इतनी सुख शांति का वर्षा पाते हैं, सुख का भी पूरा वर्षा पाते हैं। पूरा सुख 16 कला संपूर्ण, चौथाई कला भी कम नहीं, क्योंकि बाप तो पूरा ही वर्षा देते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निश्चित मर्यादा पुरुषोत्तम, देवता धर्म की स्थापना करते हैं, संपूर्ण धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्राप्ति भी पूरी है। जो 16 कला से 15 कला प्राप्ति करते हैं वो पाप के अंत तक डायरेक्ट बच्चे बनकर के नहीं रहते, वो जीवन मुक्ति का पद नहीं पाप प्राप्त करते। क्योंकि जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति, और वो तो पहले से ही छोड़ के चले जाते। जीवन में रहते पूरा वर्षा प्राप्त नहीं किया। कहा जाता है जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जब जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है तो जन्म लेने से ही अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे नहीं जन्म मिला और अधिकार अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, सुख शांति का पूरा वर्षा इसी जन्म में मिलना चाहिए। तो कहेंगे कि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ, बाकी जो सेकंड नारायण होगा सत्युता वो किससे वर्षा लेगा? वो देवता से वर्षा लेगा या शिवबाबा से वर्षा लेगा? वो तो देवताओं से वर्षा लेगा। तो कहां देवताओं की प्राप्ति और कहां डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, अंतर तो जरूर पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं वो सुख और शांति दोनों का वर्षा प्राप्त करते हैं। बाकी जो भी हैं जिनका गायन सितारों में भी नहीं होता, विश्व में चमकने वाले सितारे, जब दुनिया में कयामत बरपा होगी तो 9 लाख सितारे ही संसार में चमकेंगे। वो 9 लाख से साथ में 16 कला संपूर्णता का वर्षा प्राप्त करने वाली वो जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से प्राप्त करती है, बाकी सब शांति धाम में चले जाते। बरोबर सत्यवत्रिता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। ऐसे क्यों नहीं कहते राम ने स्थापन नहीं की, कृष्ण ने स्थापन की? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहते? राम का नाम क्यों लगा दिया? मुरली में तो बताया मेरा तो एक ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, तो राम राज्य का ही गायन क्यों है? जब अंत होता है तो राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि संगम युग में जब ड्रामा की अंत होती है तो अंत में राम की आत्मा के थ्रू ही वो सर्वशक्तिमान बाप प्रत्यक्ष होता है, उसके थ्रू ही हीरो के रूप में वो हीरो पाठधारी प्रत्यक्ष होता है और विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। तो राम वाली आत्मा ही सत्य की आदि में रचयिता साबित होती है। निराकार को रचयिता नहीं कहेंगे, बिंदु को नहीं कहेंगे रचयिता, जब तक कि वो साकार शरीर में
प्रवेश न करें, लेकिन निराकार कहा जाता है निराकारी चेत के आधार पर। बाकी हाँ, राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, राम बाबा अक्षर तो होता नहीं है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है। तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वो आकर के वर्षा देते हैं, ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई पढ़ा के वापस चले जाते हैं फिर वर्षा मिलता रहता है, नहीं, इस साकार सृष्टि में साकार में आकर के वर्षा देते हैं। सीता ब्राह्मणों को सुनानी, जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई, इनको गीता सुनाई, शूद्रों को नहीं सुनाई। डबल मशीनरी है, कौन सी, पहले शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की मशीनरी चलती है, ये हुई बेसिक नॉलेज। फिर सेकंड मशीनरी है ब्राह्मणों को देवता बनाने की मशीनरी, और हम बच्चों की डबल मशीनरी है, हम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं और ब्राह्मणों को देवता भी बनाते हैं। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, ऐसे नहीं शूद्रों का खोला, तो तीसरे नेत्र की यादगार रूप वो मूर्ति कौन सी दिखाई जाती है, जरूर पहले नंबर का ही गायन होता है, जिसकी आंख पहले पहले खुली उसी का चित्र पूजा जाता है, वो ही ब्राह्मण चोटी हुआ, चोटी का ब्राह्मण, उस चोटी के ब्राह्मण को उड़ाई दिया विराट रूप में से, उस चोटी को ब्राह्मण का रूप ही सिर्फ नहीं उड़ाई दिया, शिव बाबा को भी उड़ाई देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश, बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो, ये है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच, शिवाचार्य बेहद का संन्यास सिखलाते, सिर्फ घर घाट छोड़ना नहीं सिखलाते, इस सारी दुनिया से संन्यास दिलाना सिखाते हैं, देह और देह के साथ संबंध छुड़वाते हैं। शंकराचार्य का हद का संन्यास, बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को अब तुमको सदा सुख की दुनिया में बदल देना। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं, अब कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है, परंतु दोनों तो इकट्ठे हो न सके, लेकिन शास्त्र में क्या दिखाते हैं, कृष्णपुरी थी तो जरूर कंसपुरी भी थी, तो फिर बात कहां की हुई, जरूर संगमयुग हुआ होगा, संगमयुग में ही कृष्ण की सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा के रूप में कार्य करने के बाद जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तो उस ब्राह्मण बच्चे के थ्रू कृष्णपुरी बनती है और कंसपुरी दूसरी ओर, कंस तो दुश्मन था किसका, कृष्ण का। बाकी ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई कृष्णपुरी थी और कलयुग में कोई कंसपुरी थी और शास्त्र बनाए दिया दोनों का इकट्ठा, नहीं, ये संगम युग की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, सतयुग में फिर कंस कहां से आया, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए ना, अभी बाप खुद आया हुआ है स्वर्ग का अथाह सुख देने के लिए, इसलिए आया हुआ है, खुद आया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, माना हवा है क्या, खुद आया हुआ है माना प्रैक्टिकल में आया हुआ है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा, स्वर्ग भी साकार तो देने वाला भी साकार और लेने वाले भी साकार। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े हुए हो वो तो पढ़े, इस पढ़ने का रिजल्ट क्या होता है, बाप आकर के कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो राजयोग की पढ़ाई का रिजल्ट क्या होना चाहिए, राजा ही और धर्म पिताओं ने आकर के ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई, उन्होंने सिर्फ आकर के अपना धर्म स्थापन किया, राजा ही स्थापन नहीं कर सके। और तो बस जब बहुत ज्यादा जनरेशन उनकी हो जाती है तब कहीं उन उन धर्मों में राजा ही स्थापन होती है। बाकी धर्म पिताओं के टाइम पर सिर्फ धर्म स्थापन होता है, राजा ही स्थापन नहीं होती। और ये राजा की पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई पढ़ाई भी नहीं करता। सब आधीन बनाने वाले हैं, कोई भी स्वाधीन बनाने वाला नहीं है सिवाय शिव बाबा के। राजा ही स्वाधीन होता है, बाकी प्रजा तो पराधीन होती है। तो सब प्रजा परस्त है, प्रजा योग सिखलाते हैं। एक शिव बाबा ही है जो राजाओं का राजा बनाता है। कैसे? कोई सीधी राजा ही नहीं देते। कहते जितना तुम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे उतना तुम बड़े राजा बनेंगे। तो बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं राजयोग की, जिस राजयोग से तुम राजा बनते हो ये पढ़ाई कोई और नहीं पढ़ाता दुनिया में। डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन एक जन्म के लिए बनते हैं, वो भी बने बने न बने। लेकिन बाप तो गारंटी देते हैं मैं तुमको 21 जन्म की विश्व की बात चाहिए देता हूँ। इस पढ़ाई से बाप ही आकर के शूद्र से ब्राह्मण को देवता बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप ब्राह्मणों से देवता बनाते हैं बस, नहीं, बाप आते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन व बौद्ध भी बनाएंगे, उन लोग धर्म पिता हैं। परंतु ये कब सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? ये तो शिव बाबा का ही काम है, विकारी शूद्रों को निर्विकारी ब्राह्मण बनाना। वही ब्राह्मण को फिर देवता बनते हैं। तो हरेक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण में थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे और गुरु से हमको क्या मंत्र मिला। फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? तो ये हरेक से लिखवाना चाहिए, अपनी जन्म पत्री लिखो। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर रखी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। अभी बने नहीं हो लेकिन बनना है। तुमको निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है, काय से काय में, शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में कन्वर्ट किया है। बच्चों को हरेक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं किया है। जिस धर्म के थे तो उसके धर्म पिता को भी जानते होंगे। धर्म पिता साकार होगा या निराकार होगा? धर्म पिता तो जरूर साकार होना चाहिए, तो धर्म की भी स्थापना करता है। हमारा धर्म कौन सा है, हमारे धर्म का नाम क्या है? आदि सनातन, आदि देवी देवता सनातन धर्म। तो उसका रचयिता भी तो कोई होगा ना, कौन हुआ है? शिव बाबा। शिव बाबा की डेफिनेशन बिंदु, बिंदु को कहें कि शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। कोई प्रैक्टिकल साकार रूप तो होगा नहीं? जो भी धर्म पिताएं हैं उन धर्म पिताओं के नाम पर धर्म का नाम पड़ा, क्राइस्ट के आधार पर क्रिश्चियन धर्म पड़ा, बुद्ध के आधार पर बौद्ध धर्म पड़ा। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का रचयिता कौन? जरूर है परमपिता परमात्मा शिव ने, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना की, उसका नाम भी इसी शब्द से संबंधित होना चाहिए। शास्त्रों में सिर्फ जिक्र आया है कि ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र जो ज्ञान योग में सबसे सीखा था उसका नाम था सनत कुमार, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान में जो बड़ा है वही बड़ा ठहर। तो सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म की स्थापना हुई।
उनको योगीश्वर कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुमको निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों को हर एक से लिखाई लेना चाहिए कि पहले तुम किस धर्म के थे, तुम्हारा धर्म पिता कौन था। देखो गुरु तो बहुत किए हुए हैं, ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं, न धर्म का पता है न धर्म स्थापक का पता है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हरेक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको ही सुनाना। क्या जो शिव को भी मानने वाले नहीं है, देहदारियों में फंसे हुए हैं और शिव की रचना देवताओं को भी मानने वाले नहीं है, उनको सुनाना ही बेकार। क्यों? क्योंकि ऐसे जो नकली ब्राह्मण है वो तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, वो सत्यु के दूसरे तीसरे जन्म में आवेंगे जरूर, लेकिन पक्के देवता नहीं बनेंगे 84 जन्म लेने वाले, 16 कला संपूर्ण। क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते अंत तक बाप से, पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण कमजोरी रह जाती है आत्मा में, और वही कमजोरी द्वापर युग से प्रत्यक्ष हो जाती है, वो आत्मा दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चली जाती है। तो जो देवताओं के भक्त हैं अथवा शिव के भक्त हैं उनको ही सुनाना चाहिए, वे अच्छी रीति सुनेंगे। जो न देवताओं को मानते हैं जैसे आर्य समाज और न शिव को मानते हैं, वो शिवलिंग की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि शिवलिंग शब्द ही जाहिर करता है कि वो साकार में निराकार बैठा हुआ है। लिंग है साकार और उसमें बिंदु है निराकार, वो लिंग रूप क्यों दिखाया? लिंग रूप दिखाया इस बात की प्रत्यक्षता के लिए चित्रकार ने कि जिस रूप में परमात्मा प्रवेश करता है उसको कर्मेंद्रियों का भान नहीं है, कर्मेंद्रियां जैसे है ही नहीं। किसी व्यक्ति की कर्मेंद्रियां काट दी गई तब नाक आंख कान हाथ पांव टांगे तो क्या रह जाएगा? डर रह जाएगा, लिंग रह जाएगा। तो इस निराकारी स्टेज को चित्रकार चित्रित कैसे करे? ये तो बुद्धि की बात है, बुद्धि से ही निराकारी स्टेज को धारण किया जा सकता है। तो लिंग बनाई दिया, सोमनाथ मंदिर में लिंग बनाया, बीच में हीरा जड़ दिया बिंदु की यादगार। तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार हीरा और लिंग है निराकारी स्टेज में रहने वाले उस व्यक्तित्व की यादगार जिसमें परमात्मा प्रवेश करता है। एवर प्योर स्टेज का प्रैक्टिकल प्रूफ बनता है। तो जो देवताओं के भक्त होंगे वो अच्छी रीति सुनेंगे, जो शिव के भक्त होंगे वो अच्छी रीति सुनेंगे। सत्यु त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिनों के चित्र भी हैं। इंग्लिश में डीटीज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्या कहा? कर रहे हैं या करके चले गए? कर रहे हैं। कौन? बाबा। जब बाबा अक्षर कहा जाता है तो जरूर ग्रैंडफादर होगा। मुरली में क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है, साकार और निराकार के मेल को ही बाबा कहा जाता है, नहीं तो पिता कहा जाता है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता, बिंदु सुप्रीम सोल, उसके साथ कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। बिंदु बिंदु आत्माओं का आपस में भी भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, और वो पिता। बाबा का भी संबंध नहीं, तो दादे का भी संबंध नहीं, साधन सजनी का कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ पिता है। लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो ढेर सारे संबंध बन जाते हैं। वो बाबा भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, सब प्रकार के संबंध साकार में आने की बात बनती है। तो पाने का राज अभी पूरा प्रैक्टिकल जीवन में सीखा नहीं है। कहा जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत,
जिसने जितना इंद्रियों को जीत लिया
वो उतना ही बड़ा जगत जीत बनेगा।
सारे जगत को जीतना है तो कोई दूसरों के ऊपर हमला करने की दरकार नहीं है। क्या करना है, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लो तो दूसरी आत्मा स्वतः ही आकर के झुकने लग पड़े। सत्य को मैं पूजे थे, बाबा कहते हैं मैं तो अगर पूज दू, क्या प्रूफ इसका? बाबा कहते हैं, कहते हैं तो कहने वाला जरूर कोई शरीर से कहता होगा, बिना मुख के बिंदु बोलेगा क्या? नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ। एवर पूज्य हूँ का मतलब है कोई शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल में ऐसा एक्ट किया है जो वो एवर पूज्य गाया जाता है। उसके मंदिर बने हुए, यादगार मंदिर आज भी बने हुए हैं। अवैतवाणी में बोला है जिन कर्मेंद्रियों से याद में रह करके कर्म किया है वो कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। तुम बच्चों की हरेक कर्मेंद्रियों की पूजन का गायन और मंदिर बने हुए हैं यादगार। मेरा तो सिर्फ एक शिवलिंग का ही गायन है, शिव माना कल्याणकारी। और वो लिंग रूप क्यों बनाया हुआ, लिंग रूप बनाया हुआ है, कान का रूप क्यों नहीं बनाई दिया, नाक क्यों नहीं बनाई दी, आंख बनाई देते, आंख क्यों नहीं बनाई? क्योंकि और जो भी कर्म इंद्रियां हैं वो बस में करना आसान है, लेकिन काम इंद्रियों को जीत लेना ये सब के बस की बात नहीं है। ये 100% विजय तो परमात्मा शिव ही वो ही सक्षम है जो काम इंद्रिय पर पूरी विजय प्राप्त करता है कोई तन के द्वारा। इसलिए शास्त्रों में क्या गायन है, कामदेव को भस्म किया, जहर को पी लिया। बाप तो आए ही हम बच्चों का जहर पीने के लिए। जहर किसको कहा जाता है, यहाँ कोई स्थूल बातों का अर्थ है क्या? यहाँ तो जहर कहा ही जाता है विषय विकारों को। तो विषय विकार रूपी जो भी जहर हमारे मस्तिष्क में बुद्धि में भरा हुआ है जो कर्म इंद्रियों से निकलता है, मनुष्य विकारी है तो सारे ही जो 9 द्वार हैं उन 9 द्वारों में से गंध निकलता है, वो विषय। देवताओं के जो 9 द्वार होंगे उनमें से कहीं गंध नहीं निकलेगी, मनुष्य जो है उनके 9 द्वारों से गंध ही गंध निकलता है, क्योंकि विकारी हैं। विकारी माने व्यभिचारी, देवताएं व्यभिचारी नहीं होते। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का पुराने चित्र में नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है, राधा कृष्ण एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। क्या उनकी दृष्टि व्यभिचारी थी? नहीं, व्यभिचार का तो नाम मात्र भी नहीं। द्वापर युग से जब द्वापर नाम पड़ता है द्वापर, दो दो बातें शुरू हो जाती, तो वहां से व्यभिचार शुरू होता। सत्य को त्रेता में व्यभिचार का नाम निशान नहीं होता, इसलिए वहां गंध वाली कोई चीज भी नहीं होती। कीड़े पशु पक्षी पतंगे कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो गंध करने वाली हो। तो बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूं। अभी तुम यहां आए हो राजयोग सीखने के लिए, भविष्य की जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो तुमको फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? किसको फॉलो करना चाहिए? फॉलो 2 तरह से होता है, एक कर्मेंद्रियों से कर्म करके फॉलो करना होता है और एक होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। दोनों प्रकार से हम बच्चों को फॉलो करना है, क्योंकि बाप दोनों प्रकार का पार्ट बजाते हैं, करनहार का भी पार्ट बजाते हैं, माने कर्मेंद्रियों से कर्म करके भी दिखाते। तो करणहार का पार्ट तो बजाया, जब करणहार का पार्ट बजाया तो उस समय उसने ये नहीं देखा कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद करके दिखाया। वो कौन सा स्वरूप था? ब्रह्मा का रूप। लेकिन कोई ऐसे बच्चे होते हैं नहीं समझ सकते, ऐसी बुद्धि पथराई गई है कि कर्म देख करके भी नहीं कर सकते, तो फिर बाप को सख्त रूप धारण करना पड़ता है। फिर रूप धारण करता है, खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से जरूर कराएगा। वो है सख्त रूप, सदगुरु का रूप। इसलिए भारत की परंपरा में कहते हैं, गुरु जो कुछ करता है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जो कुछ कहता है वो जरूर करना चाहिए। तो सदगुरु का लास्ट पार्ट है करावनहार का पार्ट। करणहार का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा बजाया, तो ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे हम बच्चों को कर्म करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में, करणहार को फॉलो करना है। लेकिन अब लास्ट में है करावनहार का पार्ट, क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, करणहार का पार्ट गया, अब लास्ट में है करावनहार का पार्ट। खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। तो जो करावनहार का पार्ट है वो हुआ डायरेक्शन देने वाला पार्ट। वो डायरेक्शन को बच्चों को फॉलो करना ही पड़ेगा, पड़ेगा माना कंपल्शन है, कंपेल करता है, कंपेल माना जोर डालता है, दबाव डालता है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो जो जोर दबाव डालने वाला है वो किस स्टेज में होगा? जरूर ऐसी स्टेज में होगा कि सारी दुनिया को कंपेल करे कि तुमको अब विकारों को छोड़ना ही पड़ेगा। आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की रस्म पड़ी हुई है। ये रस्म रिवाज कहाँ की पड़ी हुई है? संगम युग में ही सारी रस्म रिवाज पड़ती है। खुद खाना बाद में खाएंगे, पहले ब्राह्मणों को भोग लगाएंगे। बाकी ज्ञान का तो इससे ताल्लुक नहीं है। किससे? भोग आदि से। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। कहाँ? वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। वहाँ माना कहाँ और यहाँ माना कहाँ? यहाँ माना और वहाँ? अच्छा, वहाँ देवताओं और ब्राह्मणों का मेला लगता है। सत्युग में ब्राह्मण होते हैं क्या? सूक्ष्म वतन की बात बताई। सूक्ष्म वतन भी कोई ऊपर की बात नहीं है, वो भी तुम बच्चों की ऊंची स्टेज की बात है। तुम ऐसी मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में स्थिर हो जाते हो कि देह और देह के संबंधों की दुनिया भूल जाते हो। तो उस सूक्ष्म वतन में वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। किसका किसका? जो देव आत्माएं हैं सत्युग में, जो राधा और कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली देव आत्माएं हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उनके जो भी संगी साथी हैं जो अभी भी शरीर छोड़ रहे हैं, वो सूक्ष्म स्टेज सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। उनका स्थूल शरीर का कर्म भोग समाप्त हो गया, तो वो देव आत्माएं किससे मिलती हैं? ब्राह्मणों से। वो है सूक्ष्म शरीरधारी, जिनको अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है एडवांस पार्टी के तीन रूप हैं, तीन ग्रुप हैं। कौन कौन से? इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। तो जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वही देवताओं की पार्टी है। देवात्माएं जिनको बेसिक नॉलेज से कनेक्शन है सिर्फ, उनको ज्यादा लंबे चौड़े ज्ञान की दरकार नहीं है। सीधा सीधा बाप ने ज्ञान सुनाया और सीधा सीधा उन्होंने माना। ज्ञान के लंबे चौड़े कथन में नहीं जाती उनको। वो पवित्रता पालन करने में, साथ रह करके पवित्रता पालन करने में भी कठिनाई नहीं होती, कोई तकलीफ भी नहीं। तो वो देवात्माएं जिन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को फॉलो किया, वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी ही बनती है। माना राधा कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में सत्युग में जाकर के जन्म लेंगी, लेकिन जन्म किससे लेंगी? तुम ब्राह्मण बच्चों से जन्म लेने वाली बनी। तो तुम ब्राह्मण ऊंचे हुए या देवताएं ऊंचे हुए? तुम ब्राह्मण जो उन देवताओं को भी जन्म देने वाले हो, 16 कला संपूर्ण देवताओं को जन्म देने के निमित्त बनते हो, वो तुम उनसे भी ऊंचे हुए। और पवित्र को ही ब्राह्मण कहा जाता है, वही ब्रह्मा मुख वंशावली होते हैं। जो ब्रह्मा मुख की बात न माने वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कैसे कहा जा सकता है? तो सूक्ष्म वतन में तुम बच्चों का मेला लगता है परमधाम जाने से पहले, इसमें मुझने की बात नहीं है, इसमें ये मेला कैसे लगेगा? सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण कहाँ से आ गए? जरूर सूक्ष्म स्थिति की बात है। बाप कहते हैं देह सहित देह के साथ संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, जब ऐसा ममत्व मिटाए देंगे तब तुम ऐसी स्टेज वाले ब्राह्मण बनेंगे जिन ब्राह्मणों में वो देवताएं भी प्रवेश करेंगे, प्रवेश करेंगे और मिलन मनाएंगे। बाकी तुम बच्चे मुझे एक को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, प्रवेश तो करेंगे। मामा बाबा की सोल बच्चों में प्रवेश तो करती है, लेकिन तुमको याद किसको करना है? ऐसे नहीं मम्मा बाबा को याद करने लग पड़ो, नहीं, याद तो शिव बाबा को ही करना। अंत मते सुगति हो जाएगी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। क्या क्या करूंगा? स्वर्ग में भेज दूंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। तो कितनी मतें हो गई? दो मतें हो गई। ब्रह्मा की मत को ये नहीं कहा श्रेष्ठ मत है, क्या कहा? इनकी मत गाई जाती है, इनकी मत का गायन है, लेकिन श्रेष्ठ मत नहीं है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत नहीं है ब्रह्मा की भी। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के तन में तो शिव बाबा ने आकर के सारी वाणी सुनाई, तो फिर ब्रह्मा के मुख से जो कुछ निकला उसमें ये भेद कैसे पैदा हो गया? भेद क्यों पैदा हो गया? ब्रह्मा के मुख से ही तो सब कुछ वाणी बोली है। नहीं, ब्रह्मा के मुख से वाणी तो बोली, लेकिन दो बातें दो प्रकार की हो गई। क्योंकि बाप तो सवेरे सवेरे बैठ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, अमृत वेले वाणी चलाते, शाम को भी चलाते रहे, लेकिन बैल के ऊपर सदैव सवारी होती है क्या? तो बीच में जो सारा दिन गुजरता था उसमें बच्चे जाके ब्रह्मा से भी पूछते थे, बाबा शादी करें, बहुत तकलीफ हो रही है, माँ बहुत बीमार है, बाप ऐसा है, ये ऐसा है, अच्छा मकान बनाए, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत दुख तकलीफ हो रही है, अच्छा ये अलग से पूछने की दरकार क्यों पड़ गई बच्चों को? क्यों दरकार पड़ गई है? जबकि मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है शादी बर्बादी, ये दुनिया विनाश होने वाली है, अब मकान बना करके तुम क्या करेंगे? इससे तो अच्छा है ईश्वरीय सेवा में पैसे सफल कर लो। तो बाबा क्या डायरेक्शन देते? बच्चों का दुख माँ को सहन नहीं कर सकती, तो ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन दे देते थे कि बच्चे, बाबा तो ऐसा चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले जो शादी करके पवित्र रह करके दिखावे, बाबा तो बहुत खुश होंगे। अच्छा जब ऐसा संभव हो सकता तो शिव बाबा को वाणी में ये बात कहने की क्या दरकार थी? शादी बर्बादी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्माएं पावरफुल सोल, सुप्रीम सोल, सर्वशक्तिवान के डायरेक्शन पर नहीं चल सकती हैं, तो वो ब्रह्मा की मत पर तो चलें। ज्यादा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्टेज नहीं पकड़ सकती हैं, तो कम से कम ब्रह्मा को ही फॉलो कर लें। तो ब्रह्मा की भी मत गाई हुई, ब्रह्मा परमात्मा शिव ने उसमें प्रवेश किया, माता का पार्ट बजाया, इसलिए माता की भी मत गाई हुई है, बाकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको याद किसको करना है? माता को याद करना है या बाबा को याद करना है? शिव बाबा को याद करना। तो जिसको याद करना है उसकी मत पर भी चलना, उसकी मत पर ही चलना चाहिए। कमजोर आत्माएं कमजोर आधार पकड़ लेती हैं और पावरफुल आत्माएं पावरफुल आधार पकड़ेंगे। इसलिए बोला कि बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। भी क्यों लगाया? माना सेकेंडरी मत है, ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है ना। ब्रह्मा का बाप, ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी और मामा ने माँ, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ से ऊंचा कौन हुआ? जब नामी है बड़ी माँ, तो बड़ी माँ का मतलब है कि उसके साथ बड़ा बाप भी जरूर होगा। तो ये यज्ञ की आज की बात है। ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए, लेकिन वो उनके अर्थ को, सहरहस्य को समझ नहीं सके। वाराणसी में गए गुरुओं के पास, वहां भी उनको हल नहीं मिला। तो अपने जीवन में उनको गुरुओं से श्रद्धा उखड़ गई, देहधारी गुरुओं से। अपने जीवन के आधार पर उन्होंने जिस व्यक्ति को सच्चा, साफ और ईमानदार समझा, उस अपने भागीदार के पास कलकत्ते में पहुंचे, जहां के लिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि ज्ञान सूर्य कहां से उदय होता है? पूरब जोन से उदय होता है। तो वहां पहुंचे और वहां जाकर के बाबा ने अपने साक्षात्कार की बात सुनाई। डायरेक्ट नहीं सुनाई, क्योंकि ब्रह्मा तो बच्चा है। किसका बच्चा है? बाप का बच्चा है। जिस बाप का बच्चा है तो अम्मा होगी कि नहीं होगी? है कि बिना अम्मा के बाप हो जाएगा? अम्मा तो जरूर होगी। तो बाबा ने सारा जो अपना साक्षात्कार की बात थी वो पहले किसी माता को सुनाया, और माता ने भागीदार को सुनाया। जिस समय सुनाया उसी समय सुनाने वाले में सुनाया गया, सुनाने वाले में सुनाने का कार्य भी शिव ने किया, और उसी समय सुनने वाले ने सुना और समझा भी। तो ज्ञान सुनना सुनाना है या समझना समझाना है? समझना और समझाना उसको ही ज्ञान कहा जाता है। तो माता के थ्रू भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पक्का पड़ गया, सुनने का और सुनाने का। माता के द्वारा सुनाया, सुनाया सुप्रीम सोल ने, एक्यूरेट सुनाया, सुन करके सुनाया, वो तो ठीक बात है, लेकिन सुनाया भी किसने? सुप्रीम सोल ने। किसके थ्रू? माता के द्वारा। और सुना किसने? प्रजापिता ने। तो प्रजापिता हुआ चोटी का ब्राह्मण। चोटी का ब्राह्मण मन जिसने ब्रह्मा के मुख से पहले पहले सुना। कौन सा ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा, जिस आदि देवी की पूजा होती है भारतवर्ष में। दाढ़ी मूछ वाले की पूजा नहीं होती, किसकी पूजा होती है? स्त्री चोले के रूप में माता की पूजा होती है भारतवर्ष में। तो ओरिजिनल ब्रह्मा वो हुआ जिस मुख से पहले पहले जिसने सुना, वो आदि ब्राह्मण हुआ। कौन? प्रजापिता, भागीदार। और उस आदि ब्राह्मण ने सुन करके समझा भी, स्वयं नहीं समझा, परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, स्वयं समझा और फिर उस माता को समझाया। उस माता में ज्ञान का बीज बोया तो माता हो गई बन्नी। कोई पुरुषन को बन्नी बनाया जाता है क्या? नहीं। तो उस माता को बन्नी बनाया, ये हो गई रचयिता, माता पिता। यज्ञ के आज में भी ये माता पिता थे, नहीं तो मुरलियों में ये वाक्य क्यों आया? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं, तो जरूर मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाली, ड्रिल कराने वाली, टीचर बनकर के बैठने वाली सोल उनसे भी ज्यादा पावरफुल थी। क्योंकि मम्मा बाबा वो तो सतयुग में जाके कृष्ण और राधा के रूप में बच्चे बनेंगे, उनको भी जन्म देने वाले जन्मदाता चाहिए। जैसे ब्राह्मण जीवन में जो शूटिंग हुई है वो सतयुग में होगी प्रैक्टिकल में। तो ब्राह्मण जीवन में राधा कृष्ण वाली आत्माएं, माने मम्मा और बाबा, उनको भी जन्म देने वाले कोई रचयिता हुए, वो है रुद्रमाला के पहले दो मणके। रुद्रमाला में मुख दिखाए जाते हैं हर मणके में। बाबा बोलते वो है मुख लेने की यादगार। क्या? रुद्राक्ष के मणकों में जो मुख बने हुए हैं वो परमात्मा बाप ने मुख लिया है, तो उसकी यादगार मुख बने हुए। लेकिन एक मुख होना चाहिए, अनेक मुख क्यों बने हुए? कि जो जो आत्माएं उस स्टेज पर जाती गई
वो प्रवेश करने की पावर प्राप्त करती गई, और उन आत्माओं ने जब प्रवेश किया तो पहचानने वालों नहीं पहचान पाया कि शिव की सोल बोलती है या कोई दूसरी आत्मा बोलती है। एक मुख का मणका बहुत मुश्किल से मिलता है, और बाकी तो कोई मणके में 14-14 मुख भी होते हैं, माने 14-14 सोल भी प्रवेश कर जाती है। तो किसमें प्रवेश करेंगे? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जिसकी याद ऐसी स्टेज की बनी हुई हो उसमें कोई दूसरी सोल प्रवेश नहीं कर सकती। याद में भी विचारी पना होगा तो प्रवेश करने वाली आत्माएं भी भांति भांति की प्रवेश करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो मुकर्रर रथ लेता हूँ, टेम्परेरी रथ भी बोला हुआ है, तो टेम्परेरी रथ उतना गाय नहीं है। मैं बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूँ, दृष्टि की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश किया। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश करता है तो बाबा कहते बोल ना कश्यप, शिव बाबा की प्रत्यक्षता के लिए उसको कहने की दरकार नहीं है क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश करता है? तो शिव बाबा तो स्वतः ही संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसका नाम ही है खुदा। खुदा माना खुद है, उसकी प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे मुख से कहने की जरूरत नहीं। जो अपने को सिद्ध करता है वो जिद्द करता है, अपने को सिद्ध करने वाला जिद्दी साबित होगा लेकिन परमात्मा बाप साबित नहीं होगा। जो परमात्मा बाप शिव है वो जिस तन में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा परमात्मा पायत बजाता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो स्वरूप तो सारी दुनिया से न्यारा रूप है। उसको बाबा ने मुरली में न्यू मैन नाम दिया है, एक्ट से भी न्यू मैन, वाचा से भी न्यू मैन, और मन के संकल्पों से भी न्यू मैन। एक शिव बाबा का ही पार्ट है ऐसा, जो निष्काम कर्म योगी है, कोई जिसको कामना नहीं। एक शंकर का ही रूप ऐसा दिखाया जाता है जिसको कांटों के जंगल में दिखाते हैं हमेशा, बाकी सब देवताओं को स्वर्ग में दिखाया लेकिन शंकर को सिर्फ कांटों के जंगल में दिखाते। क्यों? क्योंकि मैं विश्व की बादशाही मैं नहीं लेता हूँ, इसको देता हूँ मैं, तुम बच्चों को देता हूँ। तो जो कहता है कि मैं नहीं लेता हूँ वो तो जरूर इस दुनिया में बैगर का बैगर ही बनकर के रहता है, वो स्वयं विश्व की बादशाही लेने वाला नहीं है, हम बच्चों को देने वाला है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला है। तो वो सुप्रीम सोल ऊंचते ऊंचे है और ऊंचते ऊंच मत देने वाला है। तो जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो। क्यों? शिव बाबा को भोग नहीं लगाओ है? याद करो, मोस्ट बिलीवड बाप है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पाए रहे हैं, किनके साथ? उनके साथ। ऐसे क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, बाजू में ही तो बैठा हुआ है बोलने वाला, तो उनके साथ भोजन पाए रहे हैं ऐसे क्यों बोला? जरूर भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है, वो परमात्मा पार्ट जिसके लिए गायन है, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। इस याद से बहुत ताकत आएगी। इस याद से, प्रैक्टिकल याद से, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अपने बाप को याद करता है, तो प्रैक्टिकल में है दोनों का संबंध, तब तो याद प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकल में है ही नहीं तो फिर पूछते रहेंगे कैसे याद करें। बच्चा कभी माँ के लिए पूछता है, माँ मैं तेरे को कैसे याद करूं? या माँ कभी बच्चे से पूछती है, बच्चा मैं तेरे को कैसे याद करूं? जहाँ पूछा जाता है कि मैं कैसे याद करूं या मुझे याद नहीं आती है, तो जरूर आर्टिफिशियल याद है, पक्का पक्का पूरा परिचय नहीं है, जरूर कोई ज्ञान में कमी है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। तो बच्चे तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाप जो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान बाप के रूप में परमात्मा पार्ट बजाने वाला है, उसका अभी पूरा परिचय बच्चों को मिला नहीं है। भारत को भी अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्वथा सदगति जाता पति से पावन है ना, बाप और बच्चे को याद करते रहना है। माया बिगड़ भी अनेक प्रकार से डालेगी, लेकिन उनसे डरना नहीं है। इनसे माया ज्ञान तो बहुत सहज है, इस बात में बिगड़ डालेगी नहीं। याद तो तब करेंगे जब बाप की पूरी पहचान होगी। बाप की पूरी पहचान कराने में माया बिघन जरूर डालेगी। तुम कहेंगे एक बाप आया हुआ है, और माया भी लोग कहेंगे ना बाप तो है ही नहीं, वो बाप को उड़ाए देंगे। तुम बाप को दुनिया में प्रत्यक्ष करना चाहोगे और वो बाप को गुप्त करना चाहेंगे। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना है, एक से बुद्धि योग जोड़ना है, इसमें मेहनत बहुत भारी है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा हुआ ना, गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आया हुआ है। सन्मुख सुनना अच्छा, या टैप रिकॉर्ड सुनना अच्छा, या कागज के पत्तों से पढ़ना अच्छा, मुरली में तो बताया हुआ है ना, फर्स्ट क्लास नंबर वन है सन्मुख सुनना। अब मुख सन्मुख होगा तभी तो सन्मुख होगा, मुख सन्मुख नहीं होगा तो सन्मुख कैसे हुआ। इसका मतलब 69 के बाद जो बच्चे ब्राह्मण बने हैं उनके लिए तो सन्मुख का सवाल पैदा होता ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं पैदा होता, गुलजार दादी के द्वारा तो है, लेकिन बाबा ने तो बोला है मैं पतित कामी कांटे में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। गुलजार दादी को कामी कांटा कोई कह सकता है? वो तो बचपन से ही आश्रम के वातावरण में पली हुई कन्या है, उनको तो किसी को साहस भी नहीं हो सकता जो ऐसे कहे। परमात्मा बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं, उस तन में प्रवेश करके बोलते हैं तो पता भी नहीं चलता कि वो कब आया और कब चला गया। और गुलजार दादी के अंदर आने जाने का पता पड़ जाता है, उसे दिव्य जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य आत्मा प्रवेश करेगी तो आने जाने का पता चलेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा को सूक्ष्म शरीर होता है, शिव बाबा को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, इसलिए उस तन में दबाव नहीं पड़ सकता, वो तो हल्का फुल्का है, सुप्रीम सोल। जैसे ब्रह्मा के तन में आते तो पता भी नहीं पड़ता था कब आया कब चला गया, इसलिए मुरली में बोला इस ब्रह्मा को पता पड़ता है क्या कि मैं कब आया? नहीं, पता भी नहीं पड़ता। तो इससे क्या साबित हुआ कि गुलजार दादी में सिर्फ ब्रह्मा की सोल आती है, परमात्मा शिव की सोल नहीं। और एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शिव जब प्रवेश करेगा तो जो मुरली चलाएगा उस मुरली में परिवर्तन का जादू होगा। ब्राह्मण परिवार में स्नेह सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और 69 के बाद क्या हुआ, वो भावना घटती चली गई और लगातार घटती जाती है। बाहर का दिखाने का रूप पंप एंड शो वाला भले होता जाए, लेकिन अंदर से वो भावना खत्म हो गई। तो बाप है नई विश्व का रचयिता, माना नया संगठन ऐसा तैयार करता है जिसमें एक धर्म, एक राज्य, एक मत और हर प्रकार की एकता ही एकता दिखाई पड़े, किसी प्रकार का फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। तो गीता पढ़ने की बात नहीं है, क्या बात है, सन्मुख सुनने की बात है, जबकि बाप खुद आए हुए हैं, बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता, इनसे बच्चों से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा किससे मिलेगा? बाप जो डायरेक्ट मुख से बैठ सुनाते हैं वो बाप ही डायरेक्ट वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा एक ही बेहद का बाप से मिलता है।